Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadte utarte graph par, baat karenge domestic stock exchanges ki aur dusri aarthik khabron ki aur khabron ki बारीकियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध है सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट चंद्रशेखर जी. चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में.
धन्यवाद.
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश.
Thank you, Harsh. Yes, you gave a nice profile of what the program entails as usual. And let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses BRICS session, says easy cross-border payments to strengthen economic cooperation. Domestic benchmark indices log losses for third straight session. Sensex falls over 130 points. Nifty settles below 24,450. And IMF retains India's GDP growth at 7% for current financial year.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया. कहा विभिन्न देशों के बीच आसान भुगतान व्यवस्था बनाए जाने से आपसी आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा. घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे सत्र में गिरावट. सेंसेक्स 139 अंक गिरा, 80,082 पर बंद हुआ. निफ्टी 37 अंक की गिरावट के साथ 24,435 पर. और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वर्ष के लिए भारत की विकास दर 7% बरकरार रखी है.
All right, let's start with the BRICS story. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, today said BRICS represents 40% of world humanity and around 30% of the economy, and the grouping has achieved several milestones in the last two decades. At the close plenary session of the 16th BRICS summit in Kazan, PM Modi added that India is fully committed to increase cooperation under the BRICS. PM Modi welcomed efforts to increase financial integration among BRICS countries, saying trading in local currency and easy cross-border payments will strengthen economic cooperation. Talking about India's Unified Payment Interface, UPI, the Prime Minister said it is a big success story of India, which has also been adopted in many countries. He said the special emphasis is being laid on infrastructure in all the BRICS countries. He added that India has created the Gati Shakti portal to rapidly increase multimodal connectivity in the country. He also said that it has helped in integrated planning and implementation of these developments have further reduced logistic costs. PM noted that the regional presence of the new development bank, including in Gift City, India, has created new values and impact. Highlighting BRICS activities to foster economic growth, he emphasized that its efforts on trade facilitation in agriculture, resilient supply chains, e-commerce and special economic zones have generated new opportunities. He underlined the need to prioritize small and medium-scale industries. He expressed that BRICS Startup Forum, initiated by India, which is to be launched this year, would add significant value to the BRICS economic agenda. So, Shekharji, what is your take on when Modi ji talks about the BRICS countries saying that trading in local currency and easy cross-border payments will strengthen economic cooperation? Also, we have often talked about separate BRICS currency, this local currency vis-a-vis BRICS currency. Will it ever happen, or is it just good to talk about?
You know, such things don't happen overnight. It will take time, but probably what is more significant is that when he talks about the trading in local currency, that is more significant, and that has already started with some countries. And if more and more countries, you know, they start trading in local currencies, you know, first it will benefit that our reliance on dollars will go down.
That's right.
And so that will benefit both the trade partners. So that is one thing, you know, which is being taken seriously, and more countries, I think, will come on board and start trading in local currencies, which will be to the benefit of both the trading partners.
चंद्रशेखर जी, हमने ये देखा है कि भारत का ये जो पेमेंट सिस्टम है UPI, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी बात करते रहते हैं, और जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, तो खास करके यूरोपियन और पश्चिम के जो देश हैं उनके पास एक वाउ फैक्टर था कि अरे भारत ने ये जो डेवलप किया है और इतनी आसानी से लोग यहाँ पेमेंट कर ले रहे हैं, और इसे वहां भी किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि अभी वहां कई यूरोपीय देश ऐसे हैं जहां इतना एडवांसमेंट हुआ नहीं है परंपरागत तरीके से नोट करेंसी डॉलर और यूरो में अभी उनका व्यापार होता है। तो ये जो पेमेंट सिस्टम भारत ने डेवलप किया है जिससे पूरी दुनिया एक सीख ले रही है, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले और समय में किस तरीके से अगर ये सुविधा आसान हो तो जिस बात की चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि हमारा आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा, ये कैसे होगा?
ये इसमें देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम UPI से पेमेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जिस तरीके से जैसे बहुत सारे जो भारतीय जो दूसरे देशों में रहते हैं उनको जो पैसा अपने घर वापस भेजना होता है तो बड़ी आसानी से UPI के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं, तो उससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगी प्लस सहूलियत भी होगी। और UPI जो है कई कंट्रीज ने, जैसे सिंगापुर हो गया या स्पेशली मॉरिशस हो गया, जहां पे भारतीय मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे इस तरीके की पहल हो रही है कि UPI के थ्रू पेमेंट किया जा सके।
शेखर जी, ब्रिक्स पे कार्ड वॉज अनवील एट द UN एनुअल समिट एट न्यूयॉर्क। देर आर ऑल्सो कंट्रीज विच हैव शॉर्टेज ऑफ डॉलर, लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, टांजानिया, एंड देर आर कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, रशिया, म्यांमार, हु आर फेसिंग वेस्टर्न सैंक्शंस। डू यू थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, दिस विल हेल्प एंड काइंड ऑफ ब्रिज द गैप?
Yeah, this will definitely bridge. I mean, it is happening. In fact, it's not something new. The more emphasis on this cross-border and local currency payments will help. Will reduce our reliance on dollar, and this is something good. You know, we don't have to always go after dollars.
Yes.
और हाल के दिनों में कई देशों ने रुपए में भी जो हमारा ट्रेड है दूसरे करेंसी में, अब तक डॉलर में करते थे, अब रुपए में भी करने के लिए कई देश राजी हो चुके हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा भारत के लिए अचीवमेंट हम मान सकते हैं इसको।
हाँ, ये एक्चुअली ये अचीवमेंट तो ही है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में एक्चुअली पहल जो हुई है वो बहुत सारे कंट्रीज का फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, जैसे स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में कई सारे हैं, या और भी जैसे रशिया है, या जिनको डॉलर की हमेशा डॉलर की किल्लत रहती है तो वो लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, और थोड़ी इसमें थोड़ी कुछ इश्यूज होते हैं लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं।
बिल्कुल। और लालिमा, आपकी इजाजत से एक नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स ने कैसा आज परफॉर्म किया। क्योंकि मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को इंतजार रहता है मार्केट से जुड़ी खबरों का भी। तो आज सेंसेक्स में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट रही है, हालांकि ये गिरावट ज्यादा नहीं रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स रहा है वो 139 अंक गिरा है, 80,000 के अभी भी ऊपर चल रहा है, 80,082 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 37 अंक गिरा, 24,435 पर रहा है। विस्तारित बाजार में हालांकि बढ़त देखी गई है, देखिए मिड कैप में 0.5% की बढ़ोतरी रही, जबकि स्मॉल कैप में तो लगभग 1% के आसपास की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं उन 30 कंपनियों में से 22 कंपनियों के जो शेयर हैं आज वो गिरावट पर बंद हुए हैं।
A look at the stocks in detail. The domestic benchmark indices today ended with losses for the third consecutive session. The BSE Sensex shed 139 points to close at 80,082, and NSE Nifty fell 37 points to settle at 24,435. Both the indices dropped over 0.1%. The broader market at Bombay Stock Exchange outperformed the equity market. The mid-cap index gained nearly 0.5%, and the small-cap index advanced over 0.9%. In the Sensex Index, 22 out of 30 companies ended in negative territory. In the laggards, Mahindra & Mahindra lost 3.2%, Sun Pharma shed over 2.7%, and Power Grid fell 1.8%. Conversely, in the top gainers, Bajaj Finance surged nearly 5%, Tech Mahindra gained over 2.2%, and HCL Tech added 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 12 out of 20 sectors logged losses. In the top laggards, power declined over 1.39%, capital goods slipped more than 1%, healthcare was over 0.8% down. In the top gainers, information technology rose nearly 2%, tech added 1.2%, and telecommunication gained 0.4%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,177 companies advanced and 1,751 declined, while 103 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 44 companies hit their 52-week high, while 154 hit their 52-week low. So we have seen, Shekharji, that the Sensex crossed 80,000, well above 80,000. Ab kya hua? What happens that the Sensex is now, the BSE Sensex has shed 139 points. What are the factors which have led to this slipping?
You know, if we look at the past 2-3 days, you know, the decline was much steep and much sharper.
Mm-hmm.
Today it's almost flat, you know, 139 point and 0.1%, you know, you can call it flat, you
yes,
know.
Yes.
And initially, if you see, the markets were in the positive most of the time during the day, but towards the close, you know, it ended with a slight negative.
Uh-huh.
So, but we have to see our performance of Indian markets vis-a-vis the global markets. You know, the US markets were yesterday remained flat, and Nikkei was down today, where the some other markets, you know, especially those are influenced by the Chinese market, they were up, like Shanghai index was up, Hang Seng was up, and even the Korean markets were slightly up. So the performance today was not bad. If we look at what happened day before or before that,
yeah,
yesterday and day before that,
mm-hmm.
So the performance is okay. And secondly, we should also see that, you know, the IT index has performed very well, and it rose above 2%. So overall, if we see the performance of the market, as far as today is concerned, it was not bad. I mean, it's okay.
ये बस जो general किसी भी trading day में थोड़ी ups and downs होती हैं, शायद आपका इशारा उस तरफ है कि थोड़ी sales है या थोड़ा volatility तो है ही. अगर पिछले एक महीने के market पर खास करके Sensex पे हम नजर डालें, 26 सितंबर ये top हुआ था 85,000 के ऊपर, 85,169 पे, और लगभग 22 तारीख को आज हम देख रहे हैं ये 80,082 पर बंद हुआ. तो ये जो 5,000 अंकों का एक तरीके से लॉस हुआ, आपको क्या लग रहा है कि ये रिकवरी नियर फ्यूचर में, नियर वीक में हो पाएगी 5,000?
यू नो, देखिए आप जो इंडियन मार्केट्स को अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखिए यूएस मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है. यूएस में एक इलेक्शन अनसर्टेनिटी है,
बिल्कुल,
प्लस वहां पे जो अगर हम देखें तो एफआईआईज हैं, एफआईआईज जो नेट सेलर्स बने हुए हैं, एफआईआई जैसे ट्यूसडे को भी एफआईआईज ने करीब करीब 4,000 करोड़ की नेट सेलिंग करी है, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट जो डीआईआईज हैं, दे वर नेट बायर्स, तो करीब 6,000 करोड़ के उन्होंने शेयर्स खरीदे. तो एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेल करते जा रहे हैं, तो हमारा मार्केट जो है उनको स्टैंड कर रहा है. और जैसा कि अब मार्केट को अगर आप ऐसे देखें तो ऐसा हमारी इकोनॉमी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कि ये सिग्नल दे कि नहीं अब हमारी इकोनॉमी कुछ खराब हो रही है तो इसलिए मार्केट डाउन हो चाहिए. इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल, और
बल्कि आईएमएफ ने अभी हम स्टोरी भी पढ़ेंगे 7% का ग्रोथ जो है उसको बरकरार रखा हुआ है.
हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी 6.5-7% ग्रोथ उन्होंने प्रोजेक्ट कर रखा है इस करंट वित्तीय वर्ष के लिए. तो इकोनॉमी इज रनिंग डूइंग वेल, और जो इम्पैक्ट जो हो रहा है हमारे मार्केट पे, वो ग्लोबल मार्केट का है जो
और ग्लोबल मार्केट के इम्पैक्ट को या उनके सेंटिमेंट्स को, जो एफआईआईज की आप बात कर रहे हैं कि वो नेट सेलर्स बने हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि हर देश में वो सेल कर रहे हैं, भारत में चूंकि उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा था इसलिए हमें सेल वॉल्यूम थोड़े ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमारे जो डीआईआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले 4-5 वर्षों में काफी लाखों की तादाद में बढ़े हैं, इनका एक जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को।
हाँ, इनका मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, डीआईआईज का सपोर्ट मिल रहा है। एक्चुअली जो ये एफआईआईज जो है इनका थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज इनको कुछ लग रहा है जैसे चाइनीज मार्केट में अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, सो वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और प्लस इनकी अपनी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका इलेक्शन है, अनसर्टेनिटी है, थोड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से वॉर एस्केलेट हो रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बट मेरे ख्याल से जैसे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी।
शेखर जी, आई वांट टू गो बैक, यू आल्सो मेंशनड एंड यू एंडोर्स द रिपोर्ट दैट वी रेड सेइंग दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिजन नियरली 2%, बट देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स हियर। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मोस्ट आईटी कंपनीज हैज रिपोर्टेड अ डिक्लाइन, एंड मे बी बिकॉज द मेजर क्लाइंट्स is America, and that there the demand has gone down. Some are even saying that the banking crisis in the US in 2023 appears to have impacted orders in recent quarters. What's your take on this?
No, they may be partly true, but you know, you also have to, the Dolex is moving up. So if the dollar strengthens and if the rupee weakens, you know, it helps IT companies. Then probably they are looking at, the investors are looking at some long-term gains, you know, or some gains in the maybe medium term because of the strengthening of the dollar, because of the reasons which are peculiar to the US economy.
And where do you see China shaping up? Because China's economy is now probably 4.5%, if I'm not mistaken. And India is doing well. Are we still their weak neighbor? Or are we still, we can say that, how do you view this? The comparison is not a good comparison. Yet there is also a paradox in this comparison, because we are a 1.4 billion population and the fastest growing economy of the world. And as we just mentioned, 7% is going to be our growth rate. But China seems to be slowing down.
Yeah, China, I mean, you're right, China is slowing down, you know, but the stimulus package which the Chinese government is giving,
you know,
that is what prompting the FIIs to shift from India to China, because they see potential there. So that is one reason, you know, for FIIs pulling out money from India. But domestic and DIIs are playing their role, and we have a lot of retail investors, you know, those who are there in the market for the long term. So that's how our market is still stabilized and still strong.
Overall, how do you see the health of the Indian economy? Because earlier, now it's not affected by the FIIs. We are a stable economy. How do you view that?
You know, the recent IMF report says we'll grow by 7%. And that is also the projection of the Finance Ministry's economic survey, which was tabled earlier in the year, we are on the target, you know, 6.5 to 7% growth. That is what the expectations are. And if we remain at the target, you know, there's nothing to worry about. You know.
Any predictions, your take on the Sensex? Because at 80,000 plus, we are doing very well. But some people say our markets are overvalued. Do you think so?
You know, that is a perception. You know, that is a perception. You know, but. Markets have been in this range for quite some time.
Quite some time, yes. And now that the festival season is in, so we expect it to go robust.
Yeah, the market will remain robust, you know, as long as there's no problem with the economy and the corporates are doing well, so the markets will reflect.
Bilkul. रुपए पर एक नजर डाल लेते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 84.08 रुपए के स्तर पर रहा, और विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 104.4 पर कारोबार कर रहा था. और जिस आईएमएफ की हम बात कर रहे थे, जो चंद्रशेखर जी अभी बता रहे थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी सुदृढ़ बनी हुई है, इसलिए कोई मार्केट को घबराने की जरूरत नहीं है. तो आईएमएफ ने कहा है 31 मार्च 2025 को जो हमारा समाप्त होगा चालू वित्तीय वर्ष, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर यानी जीडीपी 7% बनी रहेगी, ऐसा आईएमएफ का कहना है। विश्व की आर्थिक स्थिति के बारे में नवीनतम अनुमान में आईएमएफ ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, यानी इस साल जो रहेगा उससे 0.5% की उसमें गिरावट आ सकती है। डेलॉइट इंडिया ने भी अपने नवीनतम आर्थिक परिदृश्य में भारत की वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष में 7 और 7.2% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। डेलॉइट की अर्थशास्त्री डॉक्टर रूमकी मजूमदार ने कहा है कि मुद्रास्फीति में सुधार, रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन, सरकारी खर्च में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी से आर्थिक वृद्धि को बल मिला है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चंद्रशेखर जी, क्योंकि लगातार अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि आप रोजगार के ज़्यादा अवसर सृजित कर रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रही है और आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफ़ी खर्च किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ठीक ठाक है और खरीफ उत्पादन भी रिकॉर्ड रहा है, तो आपका टेक क्या है? ये 7 और 7.1 कितना प्रैक्टिकल है? वैसे तो इसमें और बढ़त होनी चाहिए।
नहीं, ये आपकी बात ठीक है। जैसे हम कंपेयर करें तो जैसे लास्ट ईयर जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो ग्रोथ था वो 8.2 था, तो 8.2 चूंकि बहुत हाई था, तो अब 8.2 हमारा बेस बहुत हाई है, उसके ऊपर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7% होगा, तो दिस इज रीजनेबली वेल। और अगर हम देखें तो फिर हम जो हैं वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो इस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि हमको जो है ग्लोबल ग्रोथ का कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में प्रॉब्लम है, हमारे एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी हम जो 7% ग्रोथ है, दिस इज एन अचीवमेंट।
और यहाँ जीडीपी को लेकर अपने श्रोताओं को यहाँ बताना ये उचित होगा, कई सवाल पूछे जाते हैं हम जब फोन इन कॉल करते हैं, आपसे भी इस बारे में थोड़ी सी और चर्चा हम कर लेंगे कि ये जीडीपी की जो विकास दर होती है ये दरअसल उसके बढ़ने की दर होती है कि किस रेट पे वो किस प्रतिशत की दर से बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा आप बताएं कैसे।
तो जीडीपी तो एक ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट है हमारा जो भी अब जैसे जो भी बेस होता है उसपे जो उसपे हम कितना ऐड कर रहे हैं हम जी उसमें, तो वो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है,
बिल्कुल,
तो
7% ग्रोथ रेट बिल्कुल, और उस बेस ईयर के आधार पर हम हाँ, चलते हैं जो अभी के लिए साल 11-12 का चल रहा है हाँ, उस बेस ईयर को अगर 100 रुपए माने तो उस के हिसाब से पिछले साल की ग्रोथ कितनी रही और इस साल की ग्रोथ कितनी रही है, तो पिछले साल से तुलना करें तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी हमें कम लगेगी, लेकिन 7% का ग्रोथ बहुत ठीक ठाक ग्रोथ है।
Growth sounds always nice, but one factor which can kind of nullify growth is inflation. And let's talk about India's food inflation, which is expected to ease by fourth quarter of current financial year on better kharif arrivals and rising prospects of a good rabi season. According to minutes of the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee's latest meeting, the sowing of key kharif crops are higher than last year and the long period average. RBI Governor Shaktikant Das said in the minutes that the core inflation, in absence of a major cost push shock, is likely to remain contained on continuing transmission of past monetary policy actions. The minutes highlighted that the global economy has remained resilient and is expected to maintain stable momentum over the rest of the year. The three-day meeting of Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee had commenced on October the 7th, the next meeting of the MPC is scheduled from December the 4th to 6th, 2024. So, this inflation is a little bit of a tricky thing, Shekharji, because we say that we must have minimum inflation of 4%, and yet there is a maximum limit set at 6%, if I'm not mistaken.
4% plus minus 2%, that is the RBI's range.
Right. So, and it's we had a good monsoon. Where do you see the whole picture?
Inflation is a problem, but it is still being contained. You know, I would not say it is within the range. It was 5 point something in the last reporting data. Uh-huh. And, you know, RBI governor has also mentioned one very important thing in his minutes. He says that India cannot afford another bout of inflation. So uh-huh. That is why if we see that RBI has been maintaining the benchmark interest rates at 6.5% since February 2022. So there's an indication, there's clamor by the industry that RBI should cut rate, but Governor Das is holding on to the rates because he say, I mean, according to him, you know, inflation, low inflation is necessary for sustained growth. So, so the whole focus of the RBI is to ensure that the inflation doesn't go haywire. Inflation remains within control. And if we have good crops, then inflation, it will bring down the food prices also. Because we had, we are having problems on the food front.
Otherwise, food front pe problem hai, lekin uske liye ek naya sujhav bhi aaya hai ki abhi hamara jo CPI ka basket hai, jisse hum maapte hain inflation ko, retail inflation ko, usme 50% se zyada food item hai, usko kam kiye jane ka sujhav aaya hai sarkar ki taraf se, jo chief economic advisor hai. Aur ek bari agar usko, kyunki aam taur pe developed countries mein jo inflation ka mapak hai, jo uske basket mein hai, 25% ke aaspaas food ke items hote hain. Hamare paas wo lagbhag 54% hai. अगर उससे हम गिरा के उसको 40% तक करते हैं तो ये इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन ये लंबी चर्चा का विषय है. और लालिमा, एक और खबर है, जब हम सस्ती दवाओं की बात करते हैं आम आदमी के लिए और गुणवत्ता से भरी दवाओं की बात करते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचो, तो तुरंत हमारे सामने जो ख्याल आता है वो जन औषधि केंद्रों का आता है. तो दरअसल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके तहत जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, इन्होंने इस साल चालू वर्ष की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की दवाओं की बिक्री उन्होंने कर ली है. और ये बहुत ही बड़ी सफलता है. अभी 14,000 जन औषधि केंद्र हैं भारत में, जिनकी संख्या आने वाले समय में बढ़कर 25,000 हो जाएगी. हमने बातचीत की है मार्केट मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के CEO हैं रवि दधीच, और वो सुनिए क्या बता रहे हैं.
हर महीने हम लगभग 1.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेचते हैं, और अब तक जो 1 रुपए में बिकने वाले जन औषधि केंद्रों पर जो सैनिटरी नैपकिन्स सुविधा के नाम से मिलते हैं उनके 65 करोड़ यूनिट्स इनके माध्यम से बेची जा चुकी हैं. तो ये क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, हम लगातार कोशिश करते हैं कि देश के सभी जन औषधि केंद्रों पर समुचित मात्रा में ये सैनिटरी पैड्स हो, क्योंकि इनकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है और एक 10 यूनिट्स का एक जो पैक आता है उसकी केवल 10 रुपए में उसे खरीदा जा सकता है. और ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं. इसको मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑफ वुमेन के लिए एक बहुत ही ये रिमार्केबल स्टेप है कि मात्र 1 रुपए में सैनिटरी पैड यदि महिलाओं को उपलब्ध कराया जाए तो ये शायद विश्व का सबसे सस्ता सैनिटरी पैड होगा, लेकिन क्वालिटी में उतना ही अच्छा.
Well, indeed, branded medicines are always accused of having huge margins, sometimes to the extent of 2,000%, as I know. And Jan Aushadhi Kendras are selling medicines. There are about 2,000 plus medicines which they are selling, which are actually generic salts and generic medicines. And they are of great, good quality. And the reduction of price is from 50 to 90%, and that is giving us a huge benefit to poor people and the ordinary citizens.
Bilkul, aur jaldi se ek nazar dal lete hain asiai bazaron par. Asiai bazaron mein aaj badhat rahi hai. Hong Kong ka Hang Seng 1.26% badha, dakshin koreai bazar ke KOSPI mein bhi 1% ki badhat rahi. Chin ka Shanghai composite index 0.5% badha, jabki Singapore ke Straits Times index mein 0.37% ki tezi rahi. जापान के निकेई सूचकांक में हालांकि 0.8% की गिरावट रही. यूरोपीय बाजार अभी खुले हुए हैं लेकिन वहां गिरावट का दौर चल रहा है. फ्रांस का कैक 40 0.5% टूटा है. लंदन के फुटसी 100 में भी 0.5% की गिरावट चल रही है. जर्मनी के डैक्स में 0.2% की गिरावट है.
2 out of 3 U.S. indices ended nearly flat yesterday, driven by losses in industrials, materials and utility stocks. The S&P 500 ended with a marginal fall of 0.02%. Dow Jones Industrial Average shed 0.05%. And Nasdaq Composite advanced 0.18%. Look at...
Food ke prices aaj kaise rahe hain, Lalima?
Oil prices edged down today, Harsh, after industry data showed that the U.S. crude inventories increased more than expected. Brent crude was trading 1.6% down at $74.77 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading 1.7% down at $70.50 per barrel when reports last came in.
और जल्दी से सोने की कीमत हम बता दें, 0.25% की गिरावट रही है 24 कैरेट सोने में. 10 ग्राम सोने की कीमत 78,660 रुपए रही है. और आज के लिए शायद इतना ही, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल कम है. चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट मंत्रा में आने के लिए.
थैंक यू.
एंड हियर वी गो द हेडलाइंस अगेन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस ब्रिक्स सेशन, सेज इजी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस लॉग लॉसेस फॉर थर्ड स्ट्रेट सेशन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 130 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,450. And IMF retains India's GDP growth at 7% for current financial year. Friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. For now, namaskar.
Namaskar.